ओम शांति। गीत सुना आप सबने, शिव बाबा की महिमा है उसमें। एक कहावत है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में कभी देर नहीं करने का। क्यों ना, हमारे जीवन शीशे की तरफ है, कभी भी टूट सकता है। तो शुभ कार्य जब मन में उदय होता है उसको तुरंत ही कर लेना चाहिए। उसके बाद होता है अशुभस्य कालहरणम, तो हमारे जीवन को हरण कर लेता है अशुभ कार्य। इसीलिए कल जो बचेंगे हमारे कोई गारंटी नहीं है, एक घंटे के बाद क्या होगा उसका भी निश्चयता नहीं है। इसीलिए जितना होता है शुभ कार्य में देर नहीं करने का। तो सबसे बड़ा शुभ कार्य कौन सी है? सारे जीवन में बहुत सारे शुभ कार्य होता है, लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ा शुभ कार्य है परमात्मा का मिलन, परमात्मा का दर्शन, उसका सान्निध्य लाभ। इससे बड़ा शुभ कार्य कोई है क्या? जो भी जितना संन्यास भी लेते हैं, घर जो छोड़ते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, कितना ध्यान भी दर करते हैं, किस लिए? इसी के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन किसको होता है, किसको नहीं होता है? जब मन में उदय होता है तब इसी कार्य को उसी घड़ी कर लेना चाहिए। कल का कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए शुभ कार्य। तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? परमात्मा खुद आके बताते हैं, पहले आत्म दर्शन करो। जब अपने आप को पहचानेंगे तब परमात्मा को भी पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान प्रदान तस्मय श्री गुरुवे नमः। जो आपको आत्मज्ञान देता है वो आपका क्या बनता है? गुरु कहलाता है। आत्मज्ञान प्रदान तस्मय श्री गुरुवे नमः। आत्मज्ञान क्या चीज है ये तो सभी आप लोग को हमने क्लास नहीं करने आता, ये थोड़ा लिंक है इसमें। आत्मज्ञान है शरीर से अलग जो ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा है, शरीर का चेतन शक्ति है, वही आत्मा है, वही हम है। लेकिन मनुष्य सभी ने जानते हैं मैं कौन हूँ, शरीर को बताते हैं। हमारे इस ज्ञान में बोलते हैं नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं माना ज्योतिर्बिंदु आत्मा, जो शरीर का ऊर्जा, जो शरीर को चलाता है, प्राण शक्ति जिसको कहते हैं। तो आत्मज्ञान होने के बाद क्या होता है? आत्मज्ञान जैसे अपने आप को जान लेते हैं, जैसा एक फेज होता है लाइक फादर लाइक सन। अभी सन का डेफिनेशन पूरा हो गया तो बाप कैसे होगा, एज इट इज हम लोग एक सूत्र में डाल देते हैं। तो बच्चा है बिंदु रूप ज्योतिष रूप निराकार एक चेतन शक्ति, तो बाप भी कैसे होगा? ये भी बिंदु है तो वो भी बिंदु रूप है, ये ज्योतिष स्वरूप है तो वो ज्यादा से बताएंगे ज्योतिर्मय। ये अगर शरीर का नियंत्रण करके नियंता होता है वो क्या होगा? जगत नियंता विश्व नियंता होगा। ये अगर शरीर को चलाने की शक्ति जगाता है, शक्तिमान होता है, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान ज्यादातर कहेंगे। आत्मा का निर्णय करने का कोई नाप करने का कोई स्थूल में यंत्र है, इसको नाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका रूप क्या है? बाबा ने बताया बिंदु रूप है, निराकार भी एक का रूप है बिंदु रूप, उसको ज्योतिष स्वरूप बोला। तो परमात्मा कैसे होगा? ये ज्योतिर्मय, ये भी बिंदु वो भी बिंदु। अभी सभी ने आपने बोर्ड पे एक चित्र देखा होगा, अभी कौन सी त्योहार चल रहे हैं? तो हमारे ब्राह्मण कुल में भी एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद चलता रहता है। 13 तारीख को हुआ ना शिवरात्रि। शिवरात्रि कितने प्रकार की होता है? शिवरात्रि एक नित्य शिवरात्रि होता है, हर दिन शिव को स्मरण करना, क्योंकि अंधकार चारों तरफ है, ज्योति जगाना है। दूसरा है हर महीने में होता है, हर महीने में दो पक्ष होता है, एक है शुक्ल पक्ष एक है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या के पहले दिन चतुर्दशी तिथि में ये शिवरात्रि पालन होता है। तीसरा कौन सी है, महाशिवरात्रि, जो अभी 13 तारीख जो है साल में एक बार होता है। तो तीन प्रकार शिवरात्रि है। तो शिव को हम लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं ना। नमन कितने प्रकार होता है, नमन भी तीन प्रकार होता है। एक त्रिअंग, तीन अंग को हम नमन करते हैं। तीन अंग माने मस्तक झुक जाता है, दो हाथ जोड़ करते हैं, आंखें भी मुद जाते हैं, तो एक त्रिअंग। दूसरा है पंचांग, माने जैसा बैठक होके हाथ नमस्कार करके सिर झुक के पैर माने ये जानवरु थाई जिसको बोलते हैं, इसको झुका के अपने अहंकार को नमन करते हुए नमस्कार करते हैं। और तीसरा कौन सा है, साष्टांग प्रणिपात, अर्थात इसमें हमारे मस्तक भी झुक जाता है, उसके बाद आंखें, उसके बाद हाथ, दो हाथ है, उसके बाद हृदय जो बक्ष बोलते हैं, हृदय होता है, उसके बाद जानू होता है जो थाई बोलते हैं, पैर होता है, और मन और हमारे वाणी। ये मन और वाणी, वाणी वाक्य जो ये सब उसके प्रति जब समर्पित हो जाते हैं तब हमारा नमन पूर्णांग होता है, उसको अष्टांग प्रणिपात बोलते हैं। हाँ, तो दंडवत भी बोलते हैं कोई। तो इसमें क्या होता है, एक के प्रति यदि जब हम समर्पित करते हैं तब उसका हमारे प्रति भावना क्या होता है, उसका सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई झुकता नहीं, बांस जैसा खड़ा होता है, तो क्या होता है, वो कुछ देने के लिए तैयार होता है। तो ये बोलेगा इसके प्रति अहंकार है, अहंकार जिसके प्रति होता है, जिसके मन में होता है, उसको कुछ लेने की भावना नहीं आता है, वो अपने को बड़ा समझते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में पहले नमन, कोई बड़े गुरुजन हो, माँ बाप हो, श्रद्धा में हम लोग क्या करते हैं, पहले नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बाबा भी कुछ दिन पहले बताया ना, बाबा माँ को सभी नमन करते हैं, लेकिन संगम युग में एक बाप ऐसा है जो बच्चों को क्यों नमन करते हैं ना, इतना लायक बना देता है, बोलते हैं तुम तो राज्य के अधिकारी बनेंगे, हम तो नहीं बनेंगे, और आधा कल्प से तुमने हमें पुकारा है, हमें पहचान है, लेकिन आज की शिकिलाधे हो गए, बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए आप मिला है, तो आपका सेवा बाप नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखो मुरली के लास्ट में भी बाप क्या करते हैं, बच्चे को नमस्ते करते हैं। तो ऐसा भाग्य और दुनिया वालों को मिलेगा, आज भगवान क्या है, अपने बच्चे को नमस्ते करने के लिए आए हैं। अच्छा, शिव का अलग अलग नाम है, गुणवाचक नाम है, बहुत जगह में बहुत नाम है, उस नाम में उसका कर्तव्य सब छिपा हुआ है, वो नहीं मरता है, इसीलिए अजन्मा है, इसीलिए कहीं हम लोग अमरनाथ कह दिया, अमरनाथ यात्रा करते हैं ना, अभी हमारे शांतिवन में अमरनाथ गुहा बना के वहाँ शिवलिंग बनाए, हाँ झांकी बनाया, तो अमरनाथ सारे विश्व का नाथ, इसीलिए विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ बोलते हैं ना, सारे भुवन का ईश्वर इसीलिए भुवनेश्वर, सारे बाल बच्चे का ईश्वर इसीलिए ओडिशा में है बालेश्वर, केशव श्री कृष्ण का ईश्वर केशवेश्वर, राम का भी ईश्वर रामेश्वरम रामेश्वर, ज्ञान का ईश्वर ज्ञानेश्वर, गुण का भी ईश्वर गुणेश्वर महादेव, यहाँ एक है भूतेश्वर महादेव, भूतेर भू सारे भूतों का ईश्वर, भूत को भगाने वाले, नेपाल में कौन सी है, ये है पशुपतिनाथ, जितना भी हमारे अंदर पशु है, जो काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको बाबा ने पशु के साथ में तुलना किया है, तो उसको दमन करने वाला पशुपतिनाथ है, सोम रस पिलाने वाले। सोम कौन सी है, कौन सी है? दुनिया वाले सोम दारू को बोलते हैं, लेकिन बाबा ने बोलते हैं ना ज्ञान अमृत के समान है, तो अमृत रस इसी संगम में हम बच्चों को पिला रहे हैं, इसीलिए उसका नाम है सोमनाथ। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी है? इसका सभी नाम के अंदर एक नाम हम लोग जपते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम क्यों? सत्यम का अर्थ क्या है? सत्यम का अर्थ है अविनाशी। सत्यम का अर्थ है जन्म मृत्यु रहित, जन्म मरण चक्र में वो नहीं आते हैं। सत्यम का अर्थ है एज इट इज, वो जैसा है वैसा। एक कहावत है, एक सत्य शिव ईश्वर एक सत्य जगत मिथ्या, इसका अर्थ क्या है? संसार के सब चीज परिवर्तनशील, सबका परिवर्तन होता है, ईश्वर एक ही चीज है, उसको वो अपरिवर्तनीय है, उसका अपरिवर्तनशील, कभी उसका परिवर्तन होता है नहीं, इसलिए उसका नाम रखा है सत्यम। शिवम का अर्थ क्या है? उसको तीन सब अक्षर को तोड़ दो, सी ब मा। सी का अर्थ है जो पाप को नाश करते हैं, कोई भी अंदर कुछ होता है ना, माँ बाप बताते शिव शिव बोलो, मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर जो भय है ये सब नाश हो जाएगा, भूत सब नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। बाबा भी बोलता है याद में रहेंगे तो दो तीन चीज मुख्य फायदा होगा, एक तो विकर्म नहीं होगा, दूसरा विकर्म विनाश होगा, तीसरा हेल्थ ठीक होगा, आयु बढ़ेगी, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं। तो शिव नाम उच्चारण में इतना फायदा है। तो सत्यम शिवम शिव वाव, इसका अर्थ क्या है? वो सबको मुक्ति देकर घर ले पहुंचाता है। बाबा हम लोग आए हैं किस लिए? हम लोग को तो इस जीवन के बंध से मुक्त करके जीवन मुक्त अवस्था में ले जाएंगे ना, फिर सतयुग में भेजेंगे, परम धाम तक मुक्ति में ले जाएंगे, फिर बाद में सतयुग में भेजेंगे जीवन मुक्ति। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता, ये ब का अर्थ है। और म का अर्थ है क्या? सबके ऊपर मंगल करता है, मंगलकारी मंगलाकांक्षी, किसी का अहित नहीं करता है। कोई भी अहित करके आते हैं उसके पास आते हैं, वो भूल जाते हैं। सत्यम शिवम, लास्ट में कौन सी है? सुंदरम। सुंदरम का अर्थ क्या है? अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, उसके ऊपर कोई है नहीं। बाबा बोलते पति को पति, बापों का बाप, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उसके ऊपर कोई है नहीं, इसीलिए सुंदर। और सुंदर किस लिए? कोई कुछ गाली दे, सारा जीवन तो कुछ भी किया है ना, अपने जीवन में कर्म का फल भोगता है, लेकिन भगवान को दोष देते हैं, लास्ट में आके जब पहुंचता है भगवान मन में रखता है, इसीलिए वो सुंदर है। सुंदर इसलिए किस लिए? वो संपूर्ण है। अभी जो बाबा का लास्ट मुरली चला 12 तारीख को, उन्होंने क्या बोला? जीरो बाप हीरो बच्चे से मिलने आए हैं। जीरो का अर्थ क्या है? जीरो का अर्थ है संपूर्ण, बिंदु। हमारे दादा बापर दादे जब गिनती करते थे ना, पहले राम, एक दो तीन, राम क्यों? पहले शिव का नाम लेते हैं, राम अर्थ वो राम नहीं रघुपति राघव, शिव का नाम एक नाम है राम, जो सबको तारने वाला है, जो सबको आराम देने वाला है, उसका नाम लेते थे। तो पहले शिव, एक दो तीन चार, गिनती शुरुआत ऐसे ही। तो बिंदु का अर्थ क्या है? संपूर्ण। इसीलिए उपनिषद का एक मंत्र है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, इसका अर्थ क्या है? वो संपूर्ण, उसका कोई अंश में खंडित नहीं है। और संपूर्ण से भी आप संपूर्ण ले लो, बचेगा क्या? उतना ही, कुछ नहीं है, दूसरा का अकाउंट है, हमारे संसार का अकाउंट है। अब 1000 रुपया है, 1000 रुपया उठा लो बैंक से, कितना रहेगा? वो बोलता है जीरो। बाबा बोलते हैं जीरो माना संपूर्ण। और वो उसका अकाउंट थोड़ा अलग होता है, हमारे साथ मिलता जुलता नहीं है। संपूर्ण से संपूर्ण भी निकाल लो, रहेगा कितना? संपूर्ण। इसीलिए क्या बोला, जीरो बाप हीरो बच्चे से। जीरो बच्चे तो बोल सकता था, बच्चे जीरो कब बनेंगे? बाप समान, जब हमारा कर्मातीत अवस्था हो जाएगा, फ्लैश होके उठ जाएंगे, जब हम परम धाम चले जाएंगे, जीरो बन के जाएंगे। उसके पहले तो जीरो नहीं बन रहा हूँ। और हीरो क्यों बोला? देखो, सारे कल्प में जितना भी पार्ट दिया है, सबसे बढ़िया तो पार्ट हम ब्राह्मण बच्चे का है। इस पार्ट को हम बजा रहे हैं। इस लास्ट जन्म में देखो, जितने भी सन्यासी है, जितने भी सब गुरु कसाई, उसका हाल क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। परमात्मा को माने मिलाने के लिए शिष्य को चेले को सब ले आते हैं, और लास्ट में खुद जेल में चले जाते हैं। और बाबा हमको क्या कर रहे हैं? वो लोग परमात्मा का धार तक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जितना भी अनपढ़ बच्चे हो, जितना भी बुजुर्ग है, जितना सब क्या कहें, हमने पा लिया, हम मिल गया, मन खुशी होता है ना। तो किसको पाया? सबसे सुंदर को मिला है, इसीलिए हीरो हम बन गए। संपूर्ण तक मिला, इसीलिए हम क्या हो गए? हीरो हो गए। तो हीरो फिर कहाँ? हम सतयुग में चले जाएंगे, देवी देवता जिसको पूजा करते हैं, भक्त प्रजा समस्त से पूजा करते हैं, वो हमें पूजा करेंगे। किसको? ना हीरो को। तो बाबा जो बोला ना कुछ दिन पहले मुरली में, बच्चे को मैं नमन करता हूँ, द्रौपदी को पांव दबाता हूँ, तो इसीलिए ये बाबा के अभी मददगार बन गए। इसीलिए हीरो बच्चे को, जैसा वो प्रोडिगल सन का बाइबल में एक कहावत है ना, बहुत दिन के बाद बाप का संपत्ति सब खो के जब आ गया, उसके लिए भोज फिस्ट दे दिया। तो बड़ा बच्चा बोला, हम इतना दिन है हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, और वो सारे सब संपत्ति सब लुटा के आया, फिर भी उसके लिए? अरे तुम तो हो ही, वो इतना दिन के बाद आए हैं, उसके लिए तो कुछ करना है। बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा है? तो सारे ये कौन सी स्थान है? तीर्थ स्थान है। यही मधुबन कौन सी है? यही वृंदावन है, यही हरिद्वार है, और ये संगम का सबसे बड़ा तीर्थ। शांति स्तंभ पर जाइए, वहाँ लिखा है क्या, भारत सबसे महान तीर्थ है। तो उसके बीच में क्या है, आबू सबसे तीर्थ महान तीर्थ भूमि है लिखा है ना। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? तीर्थ स्थान पर बैठे हैं ना। तो हम लोग क्या हीरो नहीं है? बाप के कर्म भूमि पर, चरित्र भूमि पर बैठे है, हीरो नहीं है? इसीलिए संस्कृत में और एक परमात्मा के बारे में श्लोक है, ओम शुद्ध स्फटिक संकाशम शुद्ध विद्या प्रदायकम शुद्धम पूर्णम चिदानंदम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शुद्ध स्फटिक संकाशम, शुद्ध स्फटिक क्या होता है? उसका आर पार सब कुछ दिखाई पड़ता है, कोई उसके खामियां नहीं रहता है। कोई बाबा जिसको एलोय बोलते हैं, खाद बोलते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। शुद्ध स्फटिक संकाशम, कोई उसके अंदर शंका नहीं है, किसी के प्रति बुरी भावना, किसी के प्रति ऊंचा नीच भावना, ऐसा कुछ नहीं। हर बच्चे को समान देते हैं, लेकिन हम लोग नंबर वार क्यों बन जाते हैं? हम लोग लेने में नंबर वार बन जाते हैं। आपको 1000 रुपया दिया, आपने 1000 रुपया को अपने लिए 100 रुपया खर्चा किया, बाद बाकी क्या क्या उसको कुछ ना कुछ धंधा आदि करके उसको प्रॉफिट करके 10,000-20,000 लाख रुपया इनकम कर लिया। और एक दूसरा ने क्या किया, 1000 तो मिला है, अभी 10 दिन खाने दो, बाद में उसको क्या मिला? उन्होंने कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाया, वो 100 रुपया खाया, लास्ट में जो बचा उसमें बढ़ाते 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 इतना बढ़ा लिया। इसीलिए बाबा क्या बोलता है, तुम सब आए हो मुरली पढ़ रहे हो, सभी पढ़ाई तो एक ही है, नंबर वार क्यों बनते हैं? कोई मुरली मंथन करते हैं, मुरली को स्टडी करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके प्रति ध्यान देते हैं, कोई उसके ऊपर चित्र बनाते हैं, कोई उसके ऊपर कुछ कविता शायरी कोई ड्रामा नाटक बनाते हैं, कोई मूवी बना लेते हैं, तो उसके अंदर मन में क्या होता है, मुरली मंथन चिंतन होता है ना। और उसको देखकर दूसरे जब देखते हैं वो भी खुश होता है, तब तो क्या होता है, दुआ का बल मिलता है। तो ईश्वरीय ज्ञान क्या है, एक यहाँ तो कोई आसुरी ज्ञान नहीं है। हमारा संस्था का नाम क्या है, हरेक ने हरेक हरेक संस्था का अलग अलग नाम रखा है, और परमात्मा ने यह क्या रख दिया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और विद्यालय में क्या होगा, पढ़ाई तो होगा ना, से कुछ भी पढ़ाई हो तो उसमें क्या होता है, बाबा बोलता है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सारे कॉलेज के पढ़ाई यहाँ जितना स्टडी करेंगे अगले अगले जन्म में ऐसा होगा। बाबा बोलते नहीं, यहाँ जितना आप मुरली ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से करेंगे, वहाँ मुरलीधर के साथ आपका संग होगा। यहाँ जितना उसके सभी के साथ रास मिला के चलेंगे, वहाँ भी रास मिलाएंगे, रास करेंगे, ऐसा मुरली में आते हैं ना पॉइंट। तो ये किसके गायन है, अभी तो ना, अभी हम मिनट मिनट सेकंड सेकंड उसको ध्यान देंगे तो हमारा जीवन भी ऐसा ध्यान रखेंगे और ऐसा हमारा पद भी ऊंचा होगा। दूसरा तो परमात्मा के बारे में जो बताया ना, हम शिव पूजा तो करते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, कुछ विधि अपनाते हैं, भक्ति में उपवास करते हैं, भक्ति में जागरण करते हैं, भक्ति में व्रत रखते हैं। यह हमारा कौन सी व्रत है, है? वो एक दिन के लिए व्रत रख लेते हैं, उपवास एक दिन के लिए करते हैं। बाबा बोलते हैं हमारा क्या नित्य शिवरात्रि, क्यों कि हमारा यहाँ खंडित नहीं है। लोग दुनिया में एक दिन बर्थडे मनाते हैं, हमारा तो ईश्वरीय बर्थडे रोज ही है ना। तो जब नित्य शिवरात्रि है तो उसके लिए हमें क्या करना, वो एक दिन नहीं है, हमारा भी नित्य जागरण है, हमारा भी नित्य व्रत है। बाबा ने बोला ना अन्न शुद्धि, सिर्फ अन्न खाने से होता है क्या, और किससे होता है, क्या देख रहा हूँ, क्या हाथ से कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। बाबा ने बोला हियर नो आई विल, सी नो आई विल, टक नो आई विल, डू नो आई विल, थिंक नो आई विल, बहुत सारे बताते हैं ना। इविल माने जो बाबा ने माना करते हैं वो नहीं करने का। तो नित्य शिवरात्रि में क्या करने का, नित्य सजाग रहने का, जागरण रहने का, अवेयरनेस होने का, चौकस रहने का। तो माया क्या होगा, जहाँ शिव मंत्र है वहाँ वो आसपास नहीं आएंगे। ओम नमो शिवाय मंत्र भी उच्चारण करते हैं, इसका अर्थ क्या है, पंचाक्षर का नाम है ना नमः शिवाय, इसका अर्थ है जो हमारे शरीर जो पांच तत्व से बनी हुई है इसका शुद्धिकरण हो जाता है ओम नमः शिवाय, शुद्ध खाली मंत्र उच्चारण करने से। शरीर किस चीज से बना है, पांच तत्व कौन सी, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, क्षिति अप तेज मरुद बम, क्षिति माना इस शरीर मांस हड्डी, अप माना जल शरीर का पानी जलीय अंश है, तेज माना शक्ति, मरुद माना हवा वायु, बम माना आकाश। तो ये पांच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो हमारे ओम नमः शिवाय उच्चारण करने से ही हमारे ये पांच कर्मेंद्रिय भी शांत शीतल होता है, इसीलिए तो शिव मंत्र उच्चारण करता है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उधर क्या करता है, अजपा जप, मुख से जप करते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, कौन सी जप करना है, मन ही मन शिव के पास रहो, उपवास। उपवास का अर्थ क्या बताया, ईश्वर के साथ अंग संग रहो, उसका साथ अनुभव करो। कर्म करते हैं किसके काम कर रहे हैं, देखते हैं तो कैसे देख रहा हूँ, बाबा बोलते हैं रूहानी दृष्टि, जैसा बाप वैसा बच्चे को देखो, किसी को बुरे नजर के देखो तो क्या होगा, मुंह काला हो जाएगा। वो गाड़िया में लिखा रहता है पीछे, बुरी नजर देखने वाले तेरा काला। तो ये हमारे लिए है। बाबा किसके लिए बोलते हैं? हम बच्चों के लिए बोलते हैं, बच्चे को सावधानी देते हैं। अगर दैहिक नजर से किसी को देखेंगे तो हाल क्या होगा, किसी को बुराइयां देखने को मिलेगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। बाबा ने क्या बोलता है, गुण देखो, गुण चोर बनो। तो परमात्मा का एक नाम क्या है, गुणेश्वर। तो गुणेश्वर हम लोग को क्या बना रहे हैं, गुणवान बना रहे, गुणवती बना रहे हैं। ज्ञानेश्वर होके क्या बना रहे है, कौन सी ज्ञान दे रहे, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध स्फटिक संकाशम, शुद्ध विद्या प्रदायकम, शुद्धम पूर्णम चिदानंदम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कौन सी ज्ञान, ये ज्ञान किसी के पास होगा? हमारे सभी भाई बहने राखी बंधन के टाइम, राखी बंधन में जाते हैं, उत्सव त्योहार मनाते हैं। सब सन्यासी आदि पहले पहले क्या करते थे, डांडे में बांध के जाओ, हम लोग नहीं बांधेंगे। लेकिन परमात्मा ने ऐसा विधि बताया, बाद में वो लोग सब नतमस्तक हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। अभी 5-6 महीना में पहले एक सन्यासी नहीं आए थे, कोई आश्रम के हेड, उसको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने वतन में उसको साक्षात्कार में कोर्स करा तो दिया। महाराष्ट्र से कोई आए थे तो आके बता रहे थे। फिर 12-13 साल के बाद हमारे कोई बहने प्रदर्शनी लगाने के लिए उनके आश्रम पे गए, तो उन्होंने चित्र सब देखा। चित्र देखने के बाद बोला, हाँ ठीक है, ये तो हमने पहले से कोर्स कर लिया। तो ब्रह्मा बाबा के जब देखा तब बोला, अरे ये तो इन्होंने तो हमें कोर्स करा दिया। तो उसका गुरु का गद्दी उनको मिल गया था, तो वो ही अभी हेड बन गए। अच्छा, हेड बनने के बाद अभी पक्का ब्रह्मा कुमारी बन गई, यहाँ के क्लास लिया था, सुना है ना। तो ये गुप्त रूप में परमात्मा कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं आप देखो। आप लोग को ढूंढ ढूंढ के लाया ना, ना आप लोग क्या अपने आप चले आए, हैं? ढूंढ ढूंढ के लाया ना। कुछ दिन पहले यहाँ एक भाई आए थे, तो उनका पत्नी ज्ञान में चलते हैं थोड़ा, यहाँ आए थे और वो नहीं चलता है। बोला मैं नहीं मानता हूँ। जब यहाँ हमारे श्री कृष्ण का जो गेट है ना, वहाँ घुसा, फिर शांति स्तंभ पर इधर आया तो देखा, बोला बच्चे मैं कहीं नहीं गया हूँ, संकल्प क्या चल रहा है, मैं इधर ही हूँ। फिर रात को सोया तो जो हमारे 5 घोड़े वाला चित्र है ना मूर्ति, तो ऐसा रात में उठा के उसको कहीं कहीं घुमा घुमा के ले आया। तो क्या, तो परमात्मा यहाँ कैसे कार्य कर रहे हैं, गुप्त रूप में कार्य कर रहे हैं ना। आप उनके प्रति जितना भी काम करो, प्रत्यक्ष फल तो मिलता भी है लेकिन परोक्ष फल भी मिलता रहता है। तो परमात्मा ज्ञानेश्वर होकर क्या दे रहे हैं हमको, गुप्त रूप से इतना ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम सारा कल्प उसी के आधार से चलेंगे। और क्या दे रहे हैं, है? 2-3 दिन पहले एक मुरली में आया था, तुलसीदास चंदन घी से तिलक लगाए रघुवीर, रघुवीर वहां तो रामचंद्र को दिखाया। तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखा है, रामायण लिखा है, उसका कहानी है। भक्ति में घिसता रहता है और रघुवीर आकर तिलक लगाता है। उस वहां बाबा क्या बोला, वो राम राम नहीं है, मैं ही हूँ राम, मैं शिव, मैं आप बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी चंदन घिस रहे ना, ज्ञान का चंदन घिस रहे ना, रात दिन कैसे लगे रहे, सेवा छोड़ते हैं क्या? सेवा करना, मनमना भाव भाव कर रहना, ये सब क्या है, चंदन घिसना, मेहनत कर बच्चे, मेहनत कर, मेहनत का फल क्या होता है, मिठाई होता है। बिना मेहनत से कुछ होता है क्या, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर स्टेटस मिलेगा, पद मिलेगा। तो हमने भी बीच बीच में अब यहाँ देखेंगे ना, कुछ कुछ चित्र लगा हुआ है, ये आप देखते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगाए रघुवीर, ये लगा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। तो कौन सी चंदन, चंदन क्या होता है? चंदन सुगंध और शीतलता का प्रतीक है। हमारे 16 श्रृंगार है ना, उसके अंदर ये चंदन है। पहले चिंदी, तिलक, उसके बाद ये चंदन की बात है। तो चंदन सुगंध और शीतलता, कौन सी सुगंध है? दिव्य गुण का सुगंध है। अगर हमारे चाल चलन ठीक नहीं है, दृष्टिवृत्ति ठीक नहीं है, तो सुगंध होगा? कोई हमें प्यार करेंगे? हम बाप का श्रीमत पर चलेंगे, योग में ठीक आएंगे, मुरली क्लास अटेंड करेंगे, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, क्या बोलेंगे? शाबाश, शाबाशी मिल जाएगा ना। तो ये सुगंध का फल है। तो ये चंदन घिसना हो गया ना, तो रोज हमें छोड़ना नहीं, वो तो कहावत ऐसा है, लेकिन वास्तव में हम लोग की काम है। दीदी दादी के जो पिछले संडे के मुरली था ना, तो वो कहाँ है? बाबा के छत्र छाया में है। तो दीदी दादी के साथ हम लोग नहीं है क्या? है ना। तो ये भी कभी चित्र लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो छत्र छाया मतलब क्या है? उसके अंदर धूप और बारिश नहीं आता है। ये कौन सी धूप? माया का धूप। और कौन सी बारिश? जो हमारे नेगेटिविटी है उसका बारिश भी नहीं आएंगे। माया कुछ भी लगा दो, माया हो, रावण हो, कुछ भी हो, ये तो सारे हमारे जीवन को सेफ्टी करने के लिए बाबा सब महामंत्र बता रहे हैं ना। छत्र छाया में रहो, चंदन घिसो, कुछ भी करो, जो भी करो, बाबा हमारे जीवन को सेफ्टी रखने के लिए, निरापद रखने के लिए, ताकि कोई माया का आंच न लगे, खिसक न जाए। लेकिन कोई कोई बच्चे क्या होता है, धीरे 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 हाँ सेफ्टी से बाहर चले जाते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं, लकीर से बाहर चले जाते। हमारे सीता का अवस्था हाल क्या हो गया? तो बाबा हर टाइम हम लोग को मर्यादा के लकीर देते हैं। तो ये सब किस लिए? शिव के शरण में रहने के लिए, है ना। दूसरा ये चित्र देखकर क्या समझ में आ रहे हैं? हाँ, माताओं को बोला ना, द्रौपदी का ओ श्री कृष्ण पैर दबाया, लेकिन यहाँ बाबा स्वयं क्या कर रहे हैं? जब बच्चे थक जाते हैं, अमृत वेला नहीं उठते हैं, बाबा क्या करते हैं? खटिया हिलाते हैं, हिलाते हैं। किसी का अनुभव है? बहुतों का अनुभव है। तो ये क्या है? तो बाबा हमारे साथ नहीं है, शिव के संग हम नहीं है। तो शिव क्या है? शिव नाम, शिव संग में हमारा जीवन क्या है? पवित्र हो रहे ना। वहाँ पांच अक्षर नाम होता है, तो हमारे पांच कर्म इंद्रिया शुद्ध होता है। ये हमारे नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल में हो रहे ना। अच्छा, कभी बोलता है बाबा ये क्या देख रहे हैं? एक होता है सरोवर होता है, तालाब, मान सरोवर। तो मान सरोवर में अगर डुबकी लगाते हैं तो क्या बन जाते हैं? परी बन जाते हैं, परिया बन जाते हैं। वो परिया क्या होता है? धरती पर रहता है ना, उड़ता है। तो कौन सी तालाब, कौन सी सरोवर? बाबा बोलते हैं ज्ञान मान सरोवर में आप डुबकी लगाओ, रोज मुरली सुन लो, मुरली अध्ययन करो, मुरली चिंतन करो, डिस्कस करो, लिखो, कविता करो, उसका फिल्म बनाओ। तो पीस ऑफ माइंड चैनल में देखते हैं ना, फिल्म आदि बना के सबका मन कैसे हर्षते हैं। सबका मन अभी कहाँ जा रहा है? एक उधर ही, एक के तरफ आ रहा है ना, सबका हट्टी एक ही है ना। तो बाबा ने हम सभी का जीवन को क्या कर रहे हैं? एक बाबा एक मैग्नेट चुंबक जैसा है, सबको खींच रहे हैं, सबका बुद्धि का तार एक की तरफ कर रहे हैं। क्योंकि जब विनाश होगा तब कहाँ जाएंगे? एक की तरफ होगा ना, फिर नंबर वन तो हमारे राज्य में आएंगे। दूसरा, शिव के साथ और कौन कौन है? शिव के साथ शक्तियां हैं, वो कौन सी कौन कौन शक्ति है? सिर्फ अष्ट शक्ति, अष्ट माने कितना? आठ, और कुछ नहीं। अरे हम सभी शिव शक्तियां हैं, हम सभी शिव शक्तियां हैं, शिव का सारे शक्ति लेकर हम शक्तिशाली बन रहे ना। भक्ति में तो एक कहानी होता है, शिव शक्ति कौन है? जब रंभासुर एक असुर था, उन्होंने कामी और क्रोधी थे, और कामी क्रोधी होने के बाद एक बार क्या महिषी उसके साथ संग करके एक शिशु का जन्म दिया, उसका नाम है महिषासुर। महिषासुर बड़ा होके पराक्रम शक्तिशाली हो गए, असुर के राजा हो गए, और राजा होने के बाद वो शिव को ए ब्रह्मा जी को ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी सब भोले होते हैं ना, उन्होंने बोला ठीक है तपस्या तो कर रहे हैं, वर मांगो ना, हमने अमरत्व का वर चाहता हूँ, हमें कोई मार नहीं सके। बोला ये तो नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध है, हम सभी कानून में चल रहे हैं ना, हमारे भी नियम मर्यादा है, ये कानून विरुद्ध है, ऐसा तो जन्म लिया माने मरना ही होगा सुनिश्चित। तो बोला दूसरा वर मांगो। उन्होंने सोचा मृत्यु अगर अवधारित है तो, उन्होंने सोचा नारी तो अवला है, दुर्बल है, वो तो हमें मार नहीं सकता है, तो हमें नारी के हाथ में मृत्यु हो। वो बोला तथास्तु। तो थोड़े दिन में वो असुरों का राजा होके देवों का राज्य आक्रमण कर लिया, और देव राज्य आक्रमण करने के बाद लड़ाई शुरू हो गया, और उसका राज्य पूरा तसनस कर दिया। सभी ने सोचा ये कहां से ये इतना शक्ति मिल गया। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, तो ब्रह्मा जी फिर ध्यान में गया, अरे मैंने ही वर दे दिया ऐसा, अरे तुम लोग सब ऐसे हो गए, घरहीन हो गए, बेघर हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसका उपाय तो उनके हाथ में था, नारी के हाथ में मृत्यु। तो उन्होंने सभी देवता मिलके शक्ति कुंड रचा, उसमें जागृत हुआ दुर्गा। द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? यज्ञ कुंड से ना। बाबा बोलते तुम सब द्रौपदियां, तो हम सभी का कहां जन्म हुआ? कौन सी जो यज्ञ कुंड? ये शिव यज्ञ कुंड है ना, रुद्र यज्ञ कुंड से। कब से कब चालू हुआ ये यज्ञ कुंड? 1936 है कराची है सिंध हैदराबाद, वहां से शुरू हुआ। क्यों हुआ? गीता में एक महावाक्य लिखा है, इदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उद्बुद्धानं धर्मस्य तदात्मातं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब मैं धरा पर अवतरित होके अपना सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। अब देखो 1936 उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, सारे दुनिया में त्राही त्राही मच गए। उसी टाइम परमात्मा अवतरित हुए हैं, किसके? एक साधारण मनुष्य के तन में। आप लोग तो बता रहा था जो चारों तरफ बहुत भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लड़ाई, दंगा सब चल रहा था, उस टाइम परमात्मा आके कौन सी रथ चुना? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ को चुना और उनमें प्रवेश हुआ, हमारे यज्ञ कुंड स्थापन हुआ। तो हम सब कहाँ से जन्म लिया? हम सब पार्वती है ना, यज्ञ कुंड से जन्म लिया है, और सभी ने संतुष्ट होकर दुआओं के द्वारा हमें शस्त्र दिया है। वहाँ दुर्गा को सारे सब देवता ने अपना अपना शस्त्र देकर दशरथ बना दिया, ताकि रावण को महिषासुर को वध करने के लिए। तो हम सभी को भी अस्त्र मिल रहे ना, जो भी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबका दुआ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, ये क्या है? ये भी शस्त्र है, इसी के आधार से हम ज्ञान में चल रहे हैं, और जितना जितना परिपक्व बन रहे हैं उतना हमारा विजय सुनिश्चित है। माया पर वहाँ दुर्गा दुर्गति का नाश किया है, महिषासुर का बात क्या, हम लोग भी क्या कर रहे हैं? जितना भी सारे असुर है सबको नाश करके दैवी राज्य स्थापन करना है। तो हम सभी यज्ञ कुंड से निकले क्या, पार्वती है ना। अच्छा, एक असली बात है, शिव के शिवालय में नंदी दिखाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, नंदी का है वृषभ, उसको दिखाते हैं, इसका अर्थ क्या है? सचमुच की और नंदी जो बैल दिखाते हैं वही है? ब्रिश कुल, परमात्मा किसमें, कौन सी रथ में आता है? वो ब्रिश नहीं है, ब्रिश कुल। ब्रिश कुल माने सर्वश्रेष्ठ, एकदम उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल बोलते हैं उसको। ब्राह्मण कुल के अंदर भी जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम है उसको ब्रिश कुल बोलते हैं। उसके उस कुल के ब्रिश को हमारे जो भाषा है उसमें बैल को दिखाते हैं। उस बैल में के अंदर रथ सवारी होके नहीं है, ब्रिज कुल के जो अंदर सर्वश्रेष्ठ रथ है, बाबा ने जिसको बोला भाग्यशाली रथ, उसी रथ में प्रवेश किया और आके क्या कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, करके हम सभी को पावन बना रहे हैं। तो वहां तो वृषभ माने वो बैल दिखा दिया, लेकिन वो नहीं है, उसको भाषा को रूपांतर करके उसका अपभ्रंश कर दिया। लेकिन परमात्मा कौन सी रथ में आ गए, वृषभ कुल के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो ब्राह्मण कुल में आके हम लोग को ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मास्त्र है ना, और इसी अस्त्र के साथ हम लोग क्या करेंगे, विजयी बनेंगे, फिर सत्य राज्य स्थापन करेंगे। परमात्मा तो यही करने आए है ना। तो एक संस्कृत में श्लोक है, गीता में है, अबो जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भावम अजानन मम भूत महेश्वरम। इसका अर्थ है अबो जानन्ति मां मूढ़ा, ये सारे दुनिया में लोग नहीं जानते हैं, ये मूढ़मती है, जो साधारण मनुष्य के तन में मैं आया हूँ ये मूढ़मती मानुष नहीं जानते हैं। गीता में एकदम स्पष्ट लिखा है, अब जानती मांग मुड़ा मानुषी तनुवाश्रिताम, जिस मनुष्य तन के आश्रय करके मैं आया हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। परम भावो अजानंत मम भूत महेश्वरम, जो महेश्वर अर्थात ईश्वर जिसके तन में आए हैं, तो कोटो में बाबा भी बोलते हैं, कोटो में कोई कोई में भी कोई परमात्मा को पहचानते हैं। वो परमात्मा कौन है? ओम पूर्णम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। जो संपूर्ण है, वो बिंदु रूप है, ज्योतिष स्वरूप है, निराकार है, वो शुद्ध है, वो पूर्ण है, उसको बाबा बोलते हैं। जैसा बाप बड़े ऐसे रूप में बाप को पास पहुंचे तो बाप को पहचान सकते हैं। जैसा बाप टीचर है तो बच्चे स्टूडेंट बन के पहुंचे, बाप साधन है तो बच्चे सज्जनी बन के पहुंचे, वो गुरु है तो बच्चे शिष्य बन के पहुंचे, तो थोड़ा समानता बजाय रहता है। तो ऐसा बाबा जैसा बोलते हैं तो मुरली के पॉइंट को थोड़ा थोड़ा मनन करते रहेंगे ना, मनन बाबा दूध से दही बनते हैं, दही को मक्खन करने से मक्खन मिलता है, मक्खन से घी मिलता है, ऐसा। तो हमारा बाप को तो मिला, एक डेस्टिनेशन लक्ष्य में पहुंच गए, लेकिन वहाँ चुप रहना नहीं चाहिए। जैसे सागर हमें देखना है, सागर तक पहुंच गया, देख लिया, आनंदमय विराट विशाल हमने देख लिया, वहां तक रुकना नहीं, सागर के अंदर जाओ, उसके अंदर मोती है, उसके अंदर बहुत सारे कीमती चीज है, उसको लो रत्न मिल जाता है। तो ऐसा परमात्मा के वचन को ऐसा मथन करेंगे तो आपको मक्खन मिलेगा, नहीं तो सादा सीधा बाबा बोलते हैं पार्वती है द्रौपदी है बोल देता है, ऐसा ऊपर ऊपर खाली ले लिया तो मुरली का रस नहीं मिलता है। उसको थोड़ा मनन करेंगे तो खुद को आश्चर्य लगेगा, मैं वही हूँ। ओम शांति। शिव साजन, शिव का किरण हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, एक सेकंड खाली अनुभव करके। समाप्त।